ये आकाशवाणी दिल्ली है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। दिल्ली सरकार ने सड़कों की समीक्षा कर दिवाली तक सभी टूटी हुई सड़कों को ठीक करने का आश्वासन दिया। मेट्रो परिसरों में स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह से जुड़े दो अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। न्यायमूर्ति मनमोहन ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनिवास में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद रहीं। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने शपथ लेने के बाद मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि उनके लिए ये एक सुखद और विनम्र अनुभव है।
Very happy that I have been appointed. It's a very humbling experience and priority of the court has always been to ensure that there is ease of living for the common citizen and that's what we intend to promote. The intent is also to ensure that law and justice dwell together.
दिल्ली सरकार ने आज आश्वासन दिया कि दिवाली तक राजधानी की सभी टूटी सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में सरकार के सभी मंत्रियों और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ आज दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस बैठक में पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों की व्यापक समीक्षा हुई। इसके अंतर्गत सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत तथा छोटे गड्ढे के भराव पर विचार विमर्श हुआ। सरकार ने इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को अक्टूबर तक शहर की सड़कों की मरम्मत करने का लक्ष्य दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि सरकार युद्धस्तर पर इन सभी टूटी हुई सड़कों को ठीक करके दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली जरूर देगी। सड़क सुधार की इस कड़ी में कल सुबह 6 बजे से दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों, विधायकों और अफसरों के साथ मुख्यमंत्री आतिशी अलग अलग इलाकों में दौरा कर टूटी सड़कों का निरीक्षण करेंगी।
दिल्ली सरकार का पूरा कैबिनेट कल से दिल्ली की सड़कों पे उतरेगा। सब मंत्रियों ने और मैंने खुद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है, जहां पर हम खुद ग्राउंड पर जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और किस सड़क पर किस काम की जरूरत है उसका हम मूल्यांकन करेंगे। अगले एक हफ्ते में दिल्ली की 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड के एक एक मीटर का इंस्पेक्शन होगा।
वहीं भाजपा ने इसे एक राजनीतिक दिखावा करार दिया, जो सरकार आगामी दिल्ली विधानसभा को देखते हुए कर रही है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लगभग 10.25 तक दिल्ली की समस्याओं और शहरवासियों से कटी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार की विफलताओं के कारण मुख्यमंत्री आतिशी बदहाल छोड़ी सड़कों को अंतिम समय में सुधारना चाह रही हैं। मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कल होने वाले दौरे पर श्री सचदेवा ने कहा कि अब जैसे जैसे वे जनता के बीच जाएंगी तो बदहाल सड़कों के साथ जल बोर्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, सेवाएं और परिवहन व्यवस्था पर भी सवाल उठेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सरकार के इस निर्णय की आलोचना की। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सरकार के इन कदमों से श्री केजरीवाल के पिछले 12 साल के कार्यकाल का सच उजागर हो गया है। श्री यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के विकास पर ध्यान नहीं दिया और इसके लिए केवल पड़ोसी राज्यों, उपराज्यपाल या केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आज विश्व हृदय दिवस है। हर साल 29 सितंबर को हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विश्व स्तर पर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है यूज हर्ट फॉर एक्शन। इस अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में इंडिया गेट से भारत मंडपम तक 3 किलोमीटर की मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने जनता को शुभकामनाएं दी और उनसे हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। मेट्रो परिसरों में स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। अभियान के उपलक्ष्य में आज डीएमआरसी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें स्वच्छता अभियान हेतु सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया और प्रतिभागियों के बीच एकजुटता की भावना पर बल दिया गया। इसके अलावा डीएमआरसी कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों, निर्माण स्थल श्रमिकों आदि ने लगभग 110 स्थानों पर श्रमदान में हिस्सा लिया। डीएमआरसी ने अपने परिसर के बाहर मेट्रो स्टेशनों, डिपो और आवासीय कॉलोनियों के पास स्वच्छ वातावरण के लिए 70 स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों सीटीयू को अपनाया। जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सभी मेट्रो स्टेशनों पर घोषणाएं की जा रही हैं, जिससे यात्रियों को अभियान के बारे में जानकारी मिल सके और वे स्वच्छता गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें। राजधानी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज कल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलेंगे। एक पत्र सम्मेलन में श्री भारद्वाज ने आज आरोप लगाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि शहर के व्यापारियों को गुंडों को रंगदारी देनी पड़ रही है और वे पूरी तरह से भयभीत हैं। इसके अलावा श्री भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पुलिसकर्मियों की कमी है और 50,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश की पूरी सरकार रहती है, जिसके कारण यहां कानून व्यवस्था बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के कारण भारत विनिर्माण शक्ति केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से निर्धन और मध्यम वर्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बहुत फायदा हुआ है। इस अभियान ने प्रत्येक वर्ग के लोगों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पहल की सफलता को रेखांकित किया। मन की बात के श्रोताओं को इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि मन की बात ने साबित कर दिया है कि देश के लोग सकारात्मक सूचनाओं के लिए कितने उत्सुक हैं और ललायित हैं। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती से जुड़े लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से ही ये कार्यक्रम इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच सका है। उन्होंने टीवी चैनलों, प्रिंट मीडिया और यूट्यूबर्स का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इसका प्रसारण किया और इस पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम 12 विदेशी भाषाओं के अतिरिक्त 22 भाषाओं में सुना जा सकता है।
मन की बात की 10 वर्ष की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है, जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है।
प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन की सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सहगल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा तीनों संस्थाओं के कर्मचारियों की सराहना किया जाना उनके लिए एक प्रेरणा है और इससे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राजधानी के रंगपुरी पहाड़ी झुग्गी बस्ती के लोगों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित इस कार्यक्रम को 247 झुग्गी क्लस्टरों सहित 6,390 बूथों पर स्थानीय लोगों ने सुना। एक रिपोर्ट।
श्री नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि मन की बात असल में जन जन की बात है और आज फिर प्रधानमंत्री ने प्रकृति संरक्षण और प्रेम का संदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने अपने संदेश में जल संरक्षण, भाषाओं के संवर्धन, स्वच्छता, समाज निर्माण में मीडिया की भूमिका, देशभर में विभिन्न लोगों के द्वारा किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह आत्मीय संवाद देशभर में बड़े परिवर्तनों की पहल बना है। श्री नड्डा के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी इस अवसर पर मौजूद थे। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर लोगों को प्रकृति प्रेम के साथ ही भारतीय उत्पादों पर गर्व करने का महत्व समझाते हैं और देशवासी उनका पालन भी करते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली भाजपा श्री मोदी के संदेश अनुसार त्योहारों के अवसर पर मेक इन इंडिया उपहार देने लेने को समाज में प्रोत्साहित करेगी। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि ब्रांड इंडिया उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मेक इन इंडिया। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पाद को विश्व में एक अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद माना जाना चाहिए। श्री गोयल ने नई दिल्ली में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना के लाभार्थी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में कहा कि उन्हें पीएलआई योजना के जरिए सतत और विश्व स्तरीय गुणवत्ता के उत्पाद की ओर बढ़ना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि पीएलआई योजना सबसे सफल कार्यक्रमों में से है जिसे केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत शुरू किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि पीएलआई योजना के माध्यम से 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा।
Our estimate is we could look at an investment of upward of 2,00,000 crores being seeded through the production linked incentive scheme. It was our expectation that we'll see additional production of about 11,00,000 crores. But hearing some of the numbers today, my own sense is both for domestic demand and for export, the production also will be much more than we had expected.
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की वित्तीय स्थिति दुनिया के सभी देशों की तुलना में सबसे मजबूत है। आज नई दिल्ली में संकल्प न्यास प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला के 10वें संस्करण के सत्र को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत में उच्च वृद्धि और मुद्रास्फीति की निम्न दर है। श्री वैष्णव ने आर्थिक विकास के 4 स्तंभों का उल्लेख भी किया। ये 4 स्तंभ हैं बुनियादी ढांचे में निवेश, समावेशी विकास, विनिर्माण और कानूनों का सरलीकरण। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने के अपराध में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह से जुड़े 2 अफगानी नागरिकों को राजधानी के तिलक नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कई प्रयासों और गुप्त सूचना मिलने पर उन्होंने छापेमारी की, जहां 2 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से अब तक करीब 560 ग्राम मादक पदार्थ प्राप्त हुए हैं। पुलिस इस मामले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में और गिरफ्तारियों की उम्मीद है। राजधानी के नागलोई क्षेत्र में कल रात एक कार ने दिल्ली पुलिस के एक हवलदार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस उपायुक्त जिम्मी चिराम ने मीडिया को बताया कि देर रात करीब 2 बजे हवलदार संदीप नागलोई में गश्त पर थे, जब यह हादसा हुआ।
इंसिडेंट के बारे में पता लगाया तो संदीप जो है अपने बाइक से ऑन ड्यूटी पीट पेट्रोलिंग के लिए निकला था एंड वीना एनक्लेव के सामने जब लेफ्ट टर्न कर रहे थे तो लेफ्ट टर्न के दौरान एक दूसरा व्हीकल वहां पे 4-व्हीलर था, वैगनआर, एंड उसको जब क्रॉस करके निकला तो शायद उनके बीच में रोकने के लिए कुछ बात हुई होगी, लेकिन जब वो आगे निकल गया तो व्हीकल ने सडनली एक्सलरेट किया है और पीछे से टक्कर मारा और अराउंड जो मौका देखा है 10 मीटर के करीब जो है ड्रैग किया और दूसरे व्हीकल में हिट किया, जिससे कि क्रश हो गया और क्रश होने की वजह से हेड इंजरी बहुत सीरियस हो गया और आई थिंक हेड इंजरी की वजह से डेथ हुआ।
पुलिस ने बताया है कि आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली में आज विभिन्न क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। दिल्ली सरकार ने सड़कों की समीक्षा कर दिवाली तक सभी टूटी हुई सड़कों को ठीक करने का आश्वासन दिया। मेट्रो परिसरों में स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह से जुड़े 2 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त।